Dear brothers and sisters,
प्यारे भाइयों बहनों,
हम
तुम्हें आधार देने वाले साथ के और श्रद्धा के लिए धन्यवाद देते हैं। हम आप सबको अपना प्यार और आभार देते हैं। हाल ही सिस्टर नेल्सन और मैंने मछली घर में सुंदर मछलियों का आनंद लिया। उज्जवल रंग और आकृति की मछलियाँ उसमें घूम रही थी। पास के नौकर को मैंने पूछा, इन मछलियों को खाना कौन देता है? उसने जवाब दिया, मैं देती हूँ। मैंने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें कभी शुक्रिया दिया है? उसने जवाब दिया, अब तक तो नहीं। मैंने उन लोगों के बारे में सोचा जो बेखबर है उनके सृष्टा के बारे में, जो उनको जीवन की असली रोटी देता है। वो दिन प्रतिदिन उसकी और उसकी भलाई से अनजान जीते हैं। कितना अच्छा होता अगर सब ईश्वर की दिव्य शक्ति और प्यार से परिचित होते और उसे अपना आभार व्यक्त करते। आमन ने सिखाया, हम ईश्वर को शुक्रिया दें क्योंकि वो सदा नेकी के कार्य करता है। हमारे आभार का दर्जा हमारे उनकी ओर का प्यार का प्रमाण है। ईश्वर हमारी आत्माओं का पिता है। उसके पास गौरव भरा हार्ड मांस का शरीर है। हम उसके साथ पैदा होने से पहले स्वर्ग में जिए। अब उसने हमें शारीरिक रूप में उसी के शरीर के समान बनाया है, व्यक्तिगत रूप से। हमारे देवकुछ शारीरिक पोषण के बारे में सोचो, हवा, खाना और पानी हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता की ओर से तोहफा है। पृथ्वी को हमारे जीवन के संक्षेप सफर के लिए बनाया गया है। हम पैदा हुए बढ़ने, प्यार, शादी और परिवार बनाने की क्षमता के साथ। शादी और परिवार ईश्वर ने नियुक्त किए हैं। परिवार वक्त और शाश्वत काल के का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक खंड है। ईश्वर की खुशी की योजना में परिवारों को मंदिरों में मोहरबंद करके किया जा सकता है और उसकी उपस्थिति में हम लौट सकते हैं। ये शाश्वत जीवन है। ये इंसानों की परिवार सदस्यों के साथ सदा सहयोग रखने की गहरी कामना पूरी करता है। हम उसके दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है। उसने कहा है, मेरा कार्य और गौरव है आदमी की अमरता और शाश्वत जीवन अमल में लाना। ये उद्देश्य पाने के लिए ईश्वर ने दुनिया के से इतना प्यार किया कि उसने अपना बेटा त्यागा, जो कि ताकि जो भी उस पर विश्वास करेगा नष्ट नहीं होगा पर शाश्वत जीवन पाएगा। उसने अपने बेटे को दुनिया को दोषी ठहराने नहीं भेजा पर उसके द्वारा दुनिया को बचाने। ईश्वर की शाश्वत योजना उसके बेटा ईसा मसीह के कार्यों पर केंद्रित है। वो ईश्वर के बच्चों के क्षतिपूर्ति करने आया। उसके द्वारा अमरता मुमकिन हुई। क्षतिपूर्ति के द्वारा शाश्वत जीवन भी उन सभी के लिए मुमकिन हुआ जो उसके काबिल बनेंगे। यीशु ने समझाया, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा चाहे मर जाए फिर भी जिएगा। और कोई भी जीवित जो मुझ पर विश्वास करेगा कभी मरेगा नहीं। प्रभु की क्षतिपूर्ति और पुनरुत्थान के उपहार के लिए और ईस्टर के प्रभावशाली संदेश के लिए ईश्वर को शुक्रिया। शारीरिक उपहार, स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को से प्यार करते हैं और उन्हें शारीरिक और आध्यात्मिक उपहार दिए हैं। जब तुम आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड गाते हो, अपने शरीर के उपहार के बारे में सोचो। तुम्हारे शरीर को अद्भुत विशेषताएं तुम्हारी अपनी देवी रूप की पुष्टि करती है। तुम्हारे शरीर का हर अंग ईश्वर का शानदार उपहार है। हर आंख में खुद केंद्रित होने वाली लेंस है। नर्व और मसल आंखों को केंद्रित करके प्रतिमा बनाती हैं। आंखें दिमाग से जुड़ी है और देखी दृष्टि को रिकॉर्ड करती है। तुम्हारा दिल एक अविश्वसनीय पंप है जिससे चार नाजुक वाल्व रक्त का प्रवाह को दर्शाते हैं। वे वाल्व दिन में लाख से ज्यादा बार खुले और बंद होते हैं, साल में 36 लाख से ज्यादा बार। फिर भी बीमारी से बदले बगैर ये तनाव अनिश्चित काल तक झेलते हैं। शरीर की रक्षा तंत्र पर गौर करो। हानि से बचने को वह दर्द महसूस करता है। इन्फेक्शन होने पर वो एंटीबॉडी निर्माण करता है। त्वचा रक्षण करती है। अधिक सर्दी या गर्मी से होने वाली हानि से सावधान करती है। शरीर पुराने बेकार सेल को नवजीवन देता है। अपने महत्वपूर्ण त्वचा को नियंत्रित करता है। घाव भरती है, टूटी हड्डी को ठीक करती है। जन्म देने की क्षमता ईश्वर ने का दिव्य उपहार है। पर हमें याद रखना चाहिए कि हमें दिव्य क्षमता पूरी करने हमें सिद्ध शरीर की जरूरत है। वाकई कुछ मीठी आत्माएं नाजुक और अपूर्ण शरीर में बसी हैं। शारीरिक चुनौतियों से घिरे लोग अक्सर महान आध्यात्मिक शक्ति निर्माण करते हैं उन्हें चुनौतियों से के बदौलत। जिसने भी इंसान के शरीर के कार्य का अभ्यास किया है वो निश्चित ईश्वर की महिमा और शक्ति देखी है। शरीर दिव्य कानून पर आधारित होने की वजह से उपहार उपचार भी उस कानून की आज्ञा के पालन पर आधारित है। फिर भी कुछ लोग गलत सोचते हैं कि ये महान शारीरिक गुण संयोग से निर्माण हुए हैं कि किसी बड़े धमाके की वजह से। खुद से पूछो, क्या किसी धमाके से, किसी छपाई में धमाका होने से शब्दकोश निर्माण होगा? लगभग असंभव है।
The likelihood is most remote.
पर अगर हुआ भी तो क्या फोड़ने पर वो अपने आप को दुरुस्त कर लेगा? क्या वो नए संस्करण छाप पाएगा? अगर शरीर की साधारण रक्षा दुरुस्ती नियंत्रण और पुनरुत्पादन की शक्ति असीमित वक्त तक जारी रहती जिंदगी भी सदा जारी रहती। हाँ, हम इस धरती पर अटक जाते। दया से निर्माता ने हमारे लिए बुढ़ापन और बाकी प्रक्रियाएं दिए हैं जिनसे अंत में मौत आती है। मौत जन्म जैसे जिंदगी का हिस्सा है। धर्मशास्त्र सिखाते हैं ये जरूरी था कि मनुष्य को इस लौकिक मौत से वापस लाया जाए, नहीं तो खुशी की महान योजना नष्ट होती।
Destroy the great plan of happiness.
ईश्वर के पास मौत के दरवाजे से लौटना उनके प्यारे उनसे प्यार करने वालों के लिए जो मिलाप के लिए तैयार हैं, ये खुशी का मौका है। आखिर वक्त आएगा जब हर आत्मा और शरीर फिर जुड़ जाएगा सिद्ध रूप में। दोनों अंग और जोड़ फिर उचित ढंग से मिलेंगे और फिर जुदा नहीं होंगे। इन शरीरी उपहार के लिए ईश्वर को धन्यवाद हो। शरीर महत्वपूर्ण है, पर हमें शाश्वत आत्मा, उसमें अशाश्वत आत्मा बसती है। पैदा होने से पहले भी हमारी आत्मा जीवित थी और मरने के बाद भी जीवित रहेगी। आत्मा शरीर को सजीव बनाती है और चरित्र देती है। इस जीवन में और आने वाले जीवन में शरीर और आत्मा जब जुड़ती है अनमोल जीवित जीवात्मा बनती है। आत्मा महत्वपूर्ण होने के कारण उसका विकास शाश्वत महत्व का है। वो शक्ति पाती है जैसे हम स्वर्गीय पिता से प्रार्थना द्वारा संपर्क करते हैं। जिन गुणों से हम एक दिन हमें परखा जाएगा सभी आत्मिक है। इनमें शामिल है प्रेम, सद्गुण, निष्ठा, दया और दूसरों के लिए सेवा भाव। तुम्हारी आत्मा जो शरीर से जुड़ी और उसमें बसी है इन गुणों को ऐसे निर्माण और व्यक्त कर सकती है जो तुम्हारे शाश्वत विकास के लिए जरूरी है। आत्मिक विकास की सीढ़ियां विश्वास, पछतावा, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का उपहार और अंत तक टिके रहना। इनमें शामिल है मंदिर में एंडाउमेंट की और मोहबंदी। जैसे शरीर को प्रतिदिन भोजन की जरूरत है, आत्मा को भी पोषण आवश्यक है। आत्मा का पोषण शाश्वत सच्चाई से होता है। पिछले साल राजा जेम्स बाइबल के अनुवाद के 400 साल पूरे हुए। मॉर्मन की किताब हमारे पास लगभग 200 साल से है और 107 भाषाओं में वो अनुवादित हुई है। इन और अन्य बहुमूल्य धर्मशास्त्रों के कारण हम जानते हैं परमेश्वर हमारा शाश्वत पिता है। उनका बेटा यीशु हमारा मसीह और मुक्तिदाता है। इन आत्मिक उपहारों के लिए परमेश्वर को शुक्रिया। हम जानते हैं कई युग के पैगंबर जैसे आदम, नूह, मूसा, इब्राहिम सब ने स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह की दिव्यता सिखाई है। हमारे वर्तमान युग के स्वर्गीय पिता को स्वर्गीय पिता और यीशु मसीह ने परिचित किया जब वे पैगंबर जोसेफ स्मिथ को 1820 में प्रकट हुए। गिरजे की 1830 में संगठन किया गया। जब 182 साल बाद हम अब भी सुसमाचार को हर राष्ट्र, जाति, भाषा और लोगों में फैलाने के लिए अनुबंधित हैं। ये करने से दोनों देने वाले और पाने वालों को आशीष मिलेंगे। हमारी जिम्मेदारी है उनके बच्चों को सिखाकर परमेश्वर के ज्ञान में जागरूक करना। काफी समय पहले राजा बेंजामिन ने कहा, परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखो कि उन्होंने सब बनाया दोनों स्वर्ग और पृथ्वी में, कि उनके पास सब विवेक और शक्ति है दोनों स्वर्ग और पृथ्वी पर। विश्वास रखो कि तुम्हें पापों का से पछता कर उन्हें त्यागना पड़ेगा। परमेश्वर के सामने विनम्र मन के दिल की गहराई से माफी मांगनी पड़ेगी। यदि तुम ये सब मानते हो तो इन्हों किया करो। परमेश्वर कल, आज और एक एक जैसा है, पर हम नहीं हैं। हर दिन हमारी चुनौती है क्षतिपूर्ति की शक्ति आजमाना ताकि हम सचमुच बदल पाएं। मसीहा समान बन पाए और उमंग का उपहार के योग्य बन पाए और सदा परमेश्वर यीशु मसीह और उनके परिवारों संग और अपने परिवारों संग रह पाएं। इन शक्तियों, सौभाग्य और सुसमाचार के उपहारों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। मैं बयान देता हूं कि वो जीवित है, यीशु ही मसीह है, कि उसका बहाल गिरजा है। हमारे नेता प्रधान थॉमस एस्मानसन को हम सारे दिल से प्यार और समर्थन करते हैं। उनके साथ उनके सलाहकारों और बाबा दमूतों को हम पैगंबर दूरदृष्टि और प्रकटकर्ता के रूप में समर्थन करते हैं। मैं ये बयान यीशु मसीह के पवित्र नाम से देता हूँ। आमेन।